आप लोगों का कभी फाइव स्टार होटल में ज़रूर जाना हुआ होगा, वहाँ पे देखा होगा बहुत ही जो अच्छे होटल्स होते हैं, फाइव स्टार से मतलब कोई भी अच्छा होटल होता है, ज़मीन उसकी बड़ी साफ़ होती है और हर चीज़ बिल्कुल चमचमाती रहती है, और वहाँ पर हर चीज़ की भी इसी की यानी कोशिश की जाती है कि कोई चीज़ गंदी ना हो पाए। वहाँ पर अगर एक छोटा सा भी धब्बा कहीं पर दिखाई दे तो वो दूर से दिखाई देता है और जो मैनेजर होता है वो भी नाराज़ हो जाता है, तो उसको साफ़ करने की भी कोशिश करता है। हम लोगों का पूरी यानी हम लोगों की पूरी ज़िंदगी इसी तरह है कि खुदा ने बहुत ही उसको साफ़ बनाया है। अगर हम लोग यानी समझेंगे, बहरहाल खुदा जो है इस पूरे दुनिया के होटल का मैनेजर है, हम लोगों से बहुत नाराज़ होता है, लेकिन अगर कहीं गंदगी देखता है तो यकीनन उसे यानी उन जितने सारे अमले हैं उनकी मदद करता है, वो उस अमले की मदद करता है कि वो जाके सही तौर से उसको साफ़ कर दे, और इस सफाई को दूसरों जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या खूबसूरत इसका मालिक है और कितने अच्छे उसने बंदे खल्क किए हैं कि जो अपनी ज़मीन को इस तरह से साफ़ रखते हैं। तो आइए आज हम लोग ये काम करें कि कम से कम गुनाह करके एक बार फिर अपने खालिक का एक और ही मौजज़ा साबित हो जाएं, और ये इस यानी उस आयत कुरान की उस आयत के एक पूरा कह सकते हैं कि एक नमूना हम लोग साबित हो जाएं जो कहती है कि क्या बेहतरीन खल्क करने वाला है। प्रोग्राम सोबो ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सोबो ज़िंदगी में, और एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ हफ्ते वहदत की मुनासिबत से।
मैं भी सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत और खूबसूरत नाम से कर चुके होंगे। इंशाल्लाह आपका पूरा दिन जो है एनर्जी से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ और अच्छी अच्छी खबरों से भरा हुआ गुजरे
इंशाल्लाह। आज हमने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें तैयार की हैं, यानी आज का प्रोग्राम आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई खाने पीने के हवाले से खुद हमारे भाई बहन हैं बहुत सारे जो इस वक्त इम्तिहान दे रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स हैं उनके। वैसे इम्तिहान तो हर एक दुनिया में दे रहा है खुर्रम भाई,
बिल्कुल,
लेकिन
इम्तिहान चलते रहते हैं हमेशा। हाँ, इम्तिहान खत्म होता है तो जिंदगी के इम्तिहान, बिल्कुल जिंदगी में,
लेकिन एक खास चीज़ है स्कूल के इम्तिहानों की, वो ये है कि बहुत वो चीज़ें याद आती हैं इस दौर में। जब वो पीरियड एक खत्म हो जाता है, वो दौर खत्म हो जाता है, तो वो दौर उस वक्त समझ में नहीं आता है लेकिन बाद में बहुत आदमी।
अच्छा हसन, बड़ी आपने जो है बड़ी खतरनाक बात छेड़ दी है, और मैं जो है इस बात हमेशा इस बात पर इस मौजू पर बात करने के लिए तैयार होता हूँ कि ये कहा जाता है कि जी मेरे बचपन के दिन बड़े खूबसूरत हुआ करते थे और याद आते हैं, हर किसी को आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक मुझे, मैंने इस बात पर बहुत सोचा और एक जो चीज मुझे समझ आई वो ये है कि हम लोगों ने अपनी जवानी को थोड़ा सा खुद खो दिया है, थोड़ा खुद मुश्किल बना दिया, मुश्किलात मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात को अपने इर्द गिर्द जो है जमा कर लिया है। इसकी वजह से शायद हमारी जो जवानी है या हमारी जो कहते हैं कि मसलन जो हमारे जो जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो थोड़ी सी जो परेशानियाँ ज़्यादा होती है। अगर हम उसी तरह जैसे बचपन में हमारा दिल पाक हुआ करता था, ज़्यादा मसले मसाइल में नहीं पड़ते थे, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, या इनमें नहीं पड़ते थे कि जी हतमन जो है फलां गाड़ी लेनी है, फलां जगह पर घर लेना, मैं ठीक नहीं कह रहा।
हाँ, वो उस उम्र में तो उसकी फिक्र ही नहीं होती थी
बिल्कुल।
इसी के बारे में एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत सब वाक़िया आपने सुना, और बहरहाल इस तरह की दास्तानें हम लोगों के लिए शायद यानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती बल्कि बड़ों के लिए ही उनका असल मकसद और असल उसका यानी कह सकते हैं टारगेट जो होता है वो बड़ों को ही इस तरह के कार्टूनों ने, इस तरह के एनिमेशनों ने निशाना बनाया हुआ है। एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इससे पहले कि हम लोग मेहमान के पास चलें, वो ये है कि बचपन ही में होता ही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं अगर गलती से या बहुत ही जानबूझकर आप कोई उनको तकलीफ़ पहुँचाएँ तो बहुत अगर हुआ 10-15 मिनट में वो भूल जाते हैं और फिर से आप ही के गोद में आने के चक्कर में होते हैं। तो हम लोगों को इस तरह का होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने यानी कोई हम लोगों को नुकसान पहुंचाए किसी की जानिब से, इतनी ही तेज़ी से माफ़ कर दें। लेकिन होता ही है कि हम लोग भूलते नहीं हैं कई बरस तक, और इसमें अच्छे अच्छे अपने रिश्ते तोड़ देते हैं।
कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ करे, आपके गुनाहों को माफ करे, तो पहले आप माफ करना सीखें। ये
बिल्कुल
बात जो है
यकीनन
हमेशा बोली जाती है कि जब तक तो आप माफ करना आपको नहीं आता, आपकी छोटी सी कोई बात कर देता है आपको, आप दिल पे ले लेते हैं, कीना ले लेते हैं, और सालों भर जो है वो जहन में रह जाती है बात। माफ़ कर दें, हो सकता है बहुत सी वजूहत होती हैं हसन, कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरा शख्स जिसने आपके हक में कोई बुराई की है, शायद उसकी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो किसी
हाँ,
परेशानी में
किसी भी
था,
वजह
बहुत
से
सी,
बिल्कुल
शायद मैं कहूँगा सिर्फ 10% शायद ऐसे मौाक़े हों जिसमें किसी ने ख़ास तौर पर कि आपको जो है कि ज़ख्म दिया जाए, आपको परेशान किया जाए, कोई इस
हत्ता
तरह।
उस सूरत में भी, यानी हम लोगों को बच्चों से सीखना चाहिए
बिल्कुल
हर चीज़ में। हम
माफ़
लोग
कर
कहते
दें,
हैं बच्चों को
बिल्कुल
बड़ों से सीखना चाहिए, लेकिन इस चीज़ में हम लोगों को वाकई
बिल्कुल
बच्चों,
बिल्कुल सही,
छोटे
बहुत
बच्चों से
खूबसूरत
सीखना
बात किया
चाहिए।
आपने, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, और हम आज इंशाल्लाह इस बात पे भी ज़रा गौर करेंगे थोड़ा सा। हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर अब्बास मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब जो है वो आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करेंगे कि जब कीड़े मकोड़े काट लेते हैं या डंग मार लेते हैं तो उसके क्या जिल्द पे असरात होते हैं, और उस वक्त क्या करना चाहिए जिल्द के साथ। तो चलते हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास से मुलाकात करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप?
कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दोबारा टाइम निकाला हमारे
जी,
प्रोग्राम के लिए।
वेलकम।
डॉक्टर साहब, मौजू जो है आपने थोड़ा सा आज बड़ा मुख्तलिफ और ऐसा मौजू है जो पेश आता है हमेशा बच्चों के साथ, तो अक्सर ये पेश आता है, और दूसरा ये भी है कि बड़ों के साथ भी पेश आता है कभी कभार, जो वो कहते हैं मैं बेड के अंदर कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कारपेट्स में होते हैं, ऐसी
बिल्कुल
चीज़ें जो हैं वो लगी रहती हैं इंसान की ज़िंदगी में,
जी
तो
बिल्कुल
कहाँ से डॉक्टर साहब शुरू करेंगे बात?
जी, सबसे पहले नाज़रीन मेरा सलाम कबूल कीजिए। और देखें, जिस तरह कि आपने ख़ुद कहा कि कीड़े मकोड़े या जानवर जितने भी हैं, ये किसी ना किसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं,
ठीक है,
हम जितना भी उनसे बचना चाहें फिर भी वो मौजूद हैं। और उसकी वजह यह है कि आप अगर टोटली जो लिविंग एनिमल्स हैं या उनको अगर इंक्लूड करें, तो 50% से ज़्यादा जो तादाद है वो कीड़े मकोड़ों, हशरात और जानवरों की है,
ठीक है,
यानी इंसान जो है उनकी तादाद उनकी निस्बत बहुत ही कम
कम
है।
है सही।
यही वजह है कि हम इंसान जो है हमेशा रिस्क पे हैं, कहीं भी किसी भी वक़्त, चाहे हम घर में हों, चाहे हम जंगल में हों, चाहे हम किसी रोड पे हों, कहीं भी इस तरह का मसला जो है वो पेश आ सकता है।
सही।
और उसकी वजह यह है कि हमारी, जिस तरह के आपको पता है कि हमारी जो जिल्द है, ठीक है, हम मुख्तलिफ किस्म के लिबास यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेक्टिव जो है मैयर्स जो है उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि हो सकता है कि हो सकता है रात के वक़्त जब आप सोए होते हैं उस वक़्त आपके
जी
ऊपर हमला करें, या कहीं आप जो है वो जंगल में हैं तो वहाँ पे इस तरह का मसला पेश आ सकता है। तो
बिल्कुल
इंसान जो है हमेशा रिस्क पे है,
ठीक है
और इस तरह के मसाइल जो है हमेशा पेश आ सकते हैं।
सही।
लेकिन अक्सर ये होता है कि जब इस तरह का मसला पेश आता है तो इसको निगलेक्ट किया जाता है,
जी अहमियत नहीं
वजह
दी
भी
जाती।
यही है कि आम तौर पे इसके जो रिएक्शंस होते हैं या हमारे स्किन के ऊपर जो उसके डंग का जो असर है या काटने का जो असर है, वो आम तौर पे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत ही मुख्तसर होता है, थोड़ी सी इरीटेशन, थोड़ी सी ख़ारिश, और हो सकता है बाज़ का थोड़ी सी जो है वो रेडनेस जो है उस जगह पर आ जाए जहाँ पर डंग वगैरह मारा गया।
बिल्कुल सही।
लेकिन बाज़ का ये होता है कि यही जो आम मुख्तसर सी चीज़ है ये बहुत जो है वो ख़तरनाक भी हो सकती है,
ठीक है,
हमारा बदन जो है इसके निस्बत हो सकता है एनाफिलेक्टिक जो है रिएक्शन शो करे,
ठीक है,
और
एलर्जी का जो
बिल्कुल
रिएक्शन जिसको
एलर्जी
कहें,
का रिएक्शन जो है वो हो सकता है शॉक में तब्दील हो जाए,
अच्छा,
और ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है।
शॉक
और
में क्या
इवन
मतलब डॉक्टर?
शॉक का मतलब यह है कि जब आपको किसी जानवर या किसी आप कीड़े मकोड़े ने काटा है,
ठीक,
उसके बाद जो है फ़ौरन आपको हो सकता है कि आपके जो फेफड़े हैं वो काम करना छोड़ दें, या
अच्छा
आपका जो दिल है वो काम करना छोड़ दे,
अच्छा इस
इसको
हद तक जा
कोलैप्स,
सकता है,
बिल्कुल इस हद तक जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। और फिर डिपेंड करता है वो जिस चीज़ ने आपको काटा है,
ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह सांप का काटना है,
ठीक है,
बिच्छू का काटना है,
ठीक है,
या बाज़ अवकात आपने देखा होगा कि जो शहद की मक्खियाँ हैं उनके काटने से, जब वो चंद मक्खियाँ जो है वो एक ही टाइम पर आपको काटती हैं तो उस वक़्त इस तरह के अटैक जो है वो हो सकते
अच्छा
हैं।
ये डॉक्टर, ये जहर की वजह से हो रहा है या नहीं, ये जो एलर्जी का रिएक्शन बदन दे रहा है उसकी वजह से हो रहा है?
जी बिल्कुल, इसका जो है देखें डिपेंड करता है वही जो टॉक्सिन या जो जहर जो है
हाँ वो
जो
किस्सा है,
बदन के अंदर एंटर हुआ है, और ये जहर जो है हर जो आप कह लें कीड़ा मकोड़ा या जो जानवर है उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है,
ठीक है,
उसकी कैफियत, उसकी मकदार, उसकी माहियत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इस चीज़ को देखते हुए जो है हम ये आप कह लें कि پیشبینی کر سکتے ہیں کہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ کس حد تک شدید ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے, صحیح ڈاکٹر صاحب. اب مثال کے طور پہ اگر ایک چیز ہمیں اچھا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک تو ڈاکٹر صاحب کسی چیز نے کاٹا ہے اور آپ کی جلد میں جو ہے سوراخ ہو گیا, ایک ہوتا ہے کہ نہیں جلد کے اوپر جو ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ دانے آ گئے ہیں, سرخی آ گئی ہے, خارش ہو رہی ہے, ان کا کیا آپس میں فرق ہے؟
یہ بھی جس طرح کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ریئیکشن ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے ریئیکشنس ہیں جو کہ جیسے ہی آپ کو ڈنگ مارا گیا ہے یا جیسے ہی کسی کیڑے مکوڑے نے آپ کو کاٹا ہے, اسی وقت جو ہے آپ کہہ لیں تقریباً 6 گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کو ہم لوکل ریئیکشن کہتے ہیں. لوکل ریئیکشن جو ہے وہ عام طور پہ آپ جس طرح کے کہا کہ تقریباً 6 گھنٹوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی جو علائم ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ اس نے کاٹا ہے ایک دانہ جو ہے وہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آئے گا, تھوڑا سا ابھرا ہوا, جس طرح تھوڑی سی سوجن ہو چکی ہے, اس کے اوپر ریڈنیس بھی آ چکی ہے, اور کھجلی ہوگی آپ کو وہاں پہ, خارش ہوگی,
خارش ہوگی, صحیح.
اور بعض اوقات لیکن تھوڑی سی سوجن یا درد بھی اس جگہ پہ ہو سکتی ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن یہ ریئیکشن جو ہے جس طرح کہ ہم نے کہا کہ بہت ہی کامن ہے,
ٹھیک ہے,
اور عام طور پہ تقریباً ود ان 1 ویک جو ہے اور یا میکسیمم 10 دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہو جانا.
لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ ریئیکشن جو ہے شدید ہے, یعنی صرف ایک دانہ نہیں ہے, متعدد دانے جو ہیں ہمارے بدن کے اوپر آ چکے ہیں, اور لیکن ان کی شکل جو ہے وہ اسی طرح کی ہوگی, اور اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یعنی کوئی بھی دانہ آپ کے بدن کے اوپر نکلتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اگر سنگل دانہ ہو جس طرح کہ ہم نے کہا سوجن اور اس کے اوپر تھوڑی ریڈنیس اور کھجلی وغیرہ ہو, تو اس کا جو موسٹ پروبیبل کاز ہے, جو موسٹ کامن کاز ہے, وہی یہ کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا ہے. لیکن اگر جو ہے یہ اس سے زیادہ ہوں, بہت زیادہ تعداد میں ہوں, اور پھر ان کا جو ماہیت ہے وہ پھر بھی اسی قسم کی ہو, لیکن عام طور پہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو سینٹر میں اس جو دانہ بنا ہے اس کے سینٹر میں تھوڑا ایک چھوٹا سا سوراخ آپ کو نظر آئے گا, لیکن یہ بہت ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ ہو آپ کو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا, لیکن عام طور پہ ریئیکشن جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن اس کے متعدد ریئیکشن ہو سکتے ہیں جن میں بعض اوقات چھالا بن سکتا ہے, جس جگہ پہ آپ کو کاٹا گیا اسی جگہ پہ چھالا بن سکتا ہے, بعض اوقات یوٹریکاریا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, یعنی آپ کا پورا بدن جو ہے وہ سویل ہو جاتا ہے, ریڈ ہو جائے گا, مختلف ایون آپ کے جو ہو سکتا ہے جو چہرہ ہے وہ سوج جائے, آپ کے لب جو ہیں وہ سوج جائیں, تو اس کو جنرلائز یا جنرل یوٹریکاریا کہتے ہیں. اس طرح کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے, اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ بعض اوقات اینافلیکٹک شاک ہو سکتا ہے, وہی جس کو آپ الرجی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں, یہ الرجی جو ہے بہت شدید بھی ہو سکتی ہے, اور عام طور پہ یہ جو حملہ ہے وہی 6 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ظاہر ہو سکتا ہے.
صحیح, ٹھیک ڈاکٹر صاحب, گفتگو کو جاری رکھیں گے, یہاں پر چھوٹا سا ہم نے ایک وقفہ لینا ہے, چلتے ہیں حسن کے پاس, دیکھتے ہیں حسن جو ہے ہمیں کہاں پر لے کے جانے. جی حسن,
بہت بہت شکریہ خرم. اور ناظرین, ہم لوگوں نے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی ہیں. ایک تو ہم بتائیں گے آپ کو امتحان کے دوران بچوں کو کیا کھانا چاہیے, ایگزامز جو ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کیا لینا چاہیے, اور اگر مناسب ان کا تغذیہ ہوگا تو اس کے کتنے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں. چلتے ہیں, بریک لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پھر سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں, پروگرام صبح زندگی لے کر 6:50 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق. ہم لوگوں کا پروگرام آپ ہر روز تہران اسٹوڈیو سے دیکھ سکتے ہیں, اور جمعے کو ہم لوگوں کا منگل یعنی زیادہ تر ہی ہوتا ہے, منگل یا جمعرات کا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے. تو یعنی شنبے سے یعنی سیٹرڈے سے لے کر جمعرات تک آپ کی خدمت میں ہم لوگ لائیو حاضر ہوتے ہیں. چلتے ہیں خرم کے پاس, وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
بہت شکریہ حسن. اور جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظہیر عباس یہاں پر موجود ہیں, اور ہماری بات جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے جب انسان کی جلد پہ کاٹتے ہیں یا ان کی وجہ سے مختلف قسم کے دانے یا الرجی کے ریئیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کریں. ڈاکٹر صاحب, اور کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ جو ہے ایک دانہ یا کچھ دانے نکل آئے یا اس کے سینٹر میں جو ہے آپ نے, اور کسی اور شکل میں بھی ہمیں یہ الرجی یا ان کا جو ریئیکشن ہے کہ جب ایک ڈنگ جو ہے وہ یا ایک زہر جو ہے وہ جلد کے اندر چلا جاتا ہے.
جی, ایک جو انٹرسٹنگ اس کا ریئیکشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اکثر پیش آتا ہے کہ ایک پیشنٹ آیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے 2 ہفتے پہلے کسی سفر پہ تھے, کہیں جنگل میں گئے تھے, اور اس وقت اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہ کوئی ان کو اس طرح کی کوئی چیز فیل ہوئی ہے کہ کسی چیز نے ان کو کاٹا ہے یا ڈنگ مارا گیا ہے, لیکن 2 ہفتے کے بعد وہ اس طرح کا جو ہے ریئیکشن شروع ہوتا ہے. और जिस तरह के हमने कहा कि दाने बिल्कुल उसी तरह के हैं,
अच्छा।
बिल्कुल वही टाइप है,
सही।
लेकिन दो हफ्ते के बाद जाके जाहिर होते हैं,
अच्छा।
इसको हम डिलेड रिएक्शन कहते हैं,
ठीक है।
और इसकी वजह ये होती है कि हमारा जो आप कह लें दिफाई निज़ाम है, वो थोड़ी देर तक, यानी उसके अंदर जो उस डंग की वजह से या काटने की वजह से जो टॉक्सिन होता है, उसकी माहियत इस तरह की होती है कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है देर के ऊपर उसके ऊपर हमला करता है, या उसको हमारे बदन से निकालने की कोशिश करता है, और जब ये कोशिश करता बदन से निकालने की कोशिश करता है तो उसके नतीजे में कुछ जो है दाने हमारे बदन के ऊपर जाहिर हो सकते हैं,
ठीक है।
तो आमतौर पर ये मसला जो है वो बच्चों के अंदर पेश आता है,
अच्छा।
और ये मसला बच्चों के अंदर इस वजह से पेश आता है कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो यानी बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे, वो अभी इस तरह के मुख्तलिफ जो हशरात हैं या कीड़े मकोड़े हैं उनके साथ उसने अभी अपने आप को आप कह लें कि साजगार नहीं बनाया,
वो जान पहचान नहीं हुई अभी
बिल्कुल उनके साथ, सही। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके चूंकि हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के हशरात या कीड़े मकोड़ों ने पहले से काटा हो
और
जानते हैं, इस वजह से हमारा दिफाई निज़ाम जो है उनको पहले से जानता है, यही वजह है कि उसका रिएक्शन जो है हो सकता है या बहुत कम हो,
सही,
या जो है वो इवन इस हद तक हो सकता है कि आपको फील तक ना हो कि किसी कीड़े मकोड़े ने आपको काटा है। लेकिन बच्चों के अंदर इस तरह का रिएक्शन जो है वो शदीद हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि इस रिएक्शन को हो सकता है कि ज़्यादा करें, या आप कह लें कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कुछ लोग, ख़ास जो लोग हैं वो और ज़्यादा रिस्क पे होते हैं,
ठीक है।
उनमें से एक जो है आपने अक्सर देखा होगा कि एक घर में जो है फॉर एग्जांपल 6 लोग हैं,
है।
तो उनका कहना ये होता है कि सिर्फ हमारे बच्चे को किसी चीज़ ने काटा है,
ये कैसे
मुमकिन है कि हम 6 लोग हैं
है।
और एक ही घर में, एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही सारा माहौल है, लेकिन सिर्फ हमारे बच्चे को काटा है इसने। तो उसकी वजह ये होती है कि एक उसमें एक जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है, हमारा जो बदन का टेम्परेचर है उसके मद्देनज़र रखते हुए ये हो कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो काटते हैं। दूसरा, बदन की एक ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है, जो हमारे बदन की बू है, यानी हर जो बू है उसके साथ हो सकता है वो, यही आप मच्छर की मिसाल ले लें, मच्छर हर शख्स को नहीं काटता,
ठीक है,
या मसलन मक्खियाँ वगैरह जो हैं, या आप कह लें मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं, हर शख्स को नहीं काटेगा, जो शख्स उसको मुनासब लगेगा, जो ज़ाहिर है उसने इसके ऊपर फीड करना है,
ठीक है, अपना जो बिल्कुल
तगज़िया लेना है, और तगज़िया जो है वो हर एक के ऊपर आके नहीं करेगा, कुछ ख़ास किस्म का उसके लिए शराइत जो है वो होना लाजमी है। उनमें से एक टेम्परेचर है, एक बू है,
अच्छा।
और दूसरा CO2 है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन है, ये डिपेंड करता है कि कोई जो है वो कितना तेज तनफ्फुस लेता है,
अच्छा,
सांस लेता है, या कोई शख्स जो है वो आहिस्ता जो है वो सांस लेता है, और सोने की पोजीशन में जो है वो ये CO2 की जो एक्सक्रीशन है या जो निकलना है ये हो सकता है, अच्छा। डिफरेंट हो, तो ये इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो इसके ऊपर असरानंदाज हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जिसका बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर बच्चों के अंदर इस तरह का रिएक्शन जो है कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से बहुत ही शदीद हो, या ऐसा हो कि आपका बच्चा जो है वो एक साल में 6 या इससे ज़्यादा बार जो है उसके ऊपर इस तरह का हमला हो, यानी कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से उसका बदन जो है वो सूज जाए या दाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलें और इस हद तक दाने शदीद हों कि उसके ऊपर छाले वगैरह पड़ जाएँ और उनका जो आप कह लें कि जो रिपेयर है या उनका ठीक होना है वो बहुत देर से ठीक हूँ, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सूरत में एक आप कह लें कि हमारा ब्लड के अंदर एक कैंसर होता है जिसको लिक्योमिया कहते हैं,
अच्छा।
उन ऐसे बच्चे जिनको इस तरह की बीमारी हो सकता है वो अभी तक डायग्नोज नहीं हुई,
पता नहीं चल सका डॉक्टर
और
को,
उस और जब ये इस तरह के कीड़े मकोड़े जो हैं वो काटते हैं, चूंकि इन ऐसे अफराद का जो दिफाई निज़ाम है चूंकि वो थोड़ा वीक हो चुका होता है,
अच्छा।
यही वजह है कि ये लोग जो हैं इनका रिएक्शन बहुत ही शदीद होता है, और इसकी एक पहचान जो है वो ये है कि इस बच्चे को हो सकता है कि ल्यूकेमिया हो,
ठीक है, जो
यही वजह है कि ऐसे बच्चे जिनको एक साल में 6 से ज़्यादा बार इस तरह का हमला हो और बहुत ही शदीद हो, या 2 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो टाइम ले,
सही है,
उसको ठीक होने में, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और एक जो सिंपल टेस्ट है CBC उसके अंजाम देने से हमको पता लगाया जा सकता है, हम ये पता लगा सकते हैं कि आया इस बच्चे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन एक वायरस भी है जो उस सूरत में भी इस तरह का मसला पेश आ सकता है, जिसको EBV वायरस कहते हैं, ये वायरस आमतौर पर आप कह लें कि जो हमारे लिम्फ नोड हैं उनको बड़ा करता है,
डिफाई सिस्टम जो है उसके
बिल्कुल, और इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे बदन के अंदर जिस तरह आप कह लें कि लीवर है वो बड़ा हो सकता है, हमारी जो आप कह लें स्प्लीन है वो बड़ी हो सकती
सही
है,
है।
तो ये मुख्तलिफ किस्म के उसके रिएक्शन है, साथ साथ जो है वो फीवर हो सकता है।
ठीक है,
तो ये जो बच्चे होते हैं जिनको EBV या ल्यूकेमी हो उनका रिएक्शन जो है वो शदीद होगा,
हो सकता है।
यही वजह है कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है।
सही।
लेकिन अगर जो रिएक्शन है वो बहुत कम हो तो उस सूरत में उनको घर के अंदर ही जो है वो मैनेजमेंट की जा सकती है और उसका एक सादा सा जो है वो ट्रीटमेंट ये है।
डॉक्टर ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, यहाँ पर छोटा सा हमने एक वक्फा लेना है, माफ़ कीजिएगा, चलते हैं हसन के पास। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगु चल रही थी। वैसे मच्छर की याद दिला दी डॉक्टर साहब आपने, वो आजकल कुछ सुकून मिला था,
हाँ,
गर्मियों में वो सामने आ जाते हैं सारे, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो बहरहाल आजकल फिर से उसका मौसम थोड़े दिन के अंदर ही शुरू होने वाला है, खुद को अभी से तैयार कर लीजिए और ताज्जुब न करिए अगर आपको काट रहा है तो, हो सकता है आप में कोई ख़ास क्वालिटी हो, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ मच्छर को अच्छी लग गई हो जो आपकी तरफ आ रहा है, कम से कम मच्छर ही तो हम लोगों को पसंद कर ले। चलते हैं एक कव्वाली देखते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो एक और चीज़ भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, बहुत ही अहम है आजकल के हवाले से, खुदा सर्दियों में जो हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं उसमें उसके ख़ास उसूल होते हैं, उसका बहुत हम लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना होगा। लेकिन चलते हैं खुर्रम के पास, पहले वो अपनी गुफ्तगू कहीं तक तो पहुँचाएँ फिर हम चलें।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, हम अपनी गुफ्तगू पहुँचाते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो गाड़ी का स्टार्ट करने का जो बड़ा मसला है, ये सुबह सुबह जो अगर पार्किंग में ना खड़ी हो गाड़ी ठंडी हो जाती है और बड़ा मसला हो जाता है उसको स्टार्ट करने में,
उसके बारे में हम बताएंगे।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ट्रीटमेंट की तरफ आप जा रहे थे, क्या है इसका ट्रीटमेंट?
हमने अब तक जो बात की है वो मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि कुछ ऐसे कीड़े मकड़ों की थी इनका रिएक्शन जो है, इनमें जो है वो मच्छर शामिल है,
ठीक है,
इसमें मक्खियाँ शामिल हैं, आप देखें इसमें जो है खटमल वगैरह हैं,
सही है,
जो कि बेड, जिनको बेड बग्स भी कहा जाता है। ये आम तौर पे जो रिएक्शन अभी तक जिनकी हमने बात की है, जो लोकल रिएक्शन है या ऐसे रिएक्शन जो डिलेड हैं, जिस तरह के हमने कहा कि दो हफ्ते के बाद जो है वो ज़ाहिर हो सकते हैं, ये सारे जो रिएक्शन है ये इन आम तौर पे इन से तीन या चार जो कीड़े मकोड़ों की हमने बात की है इन्हीं की वजह से पेश आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन जो ख़ास हैं, जिस तरह के इंसान का काटना है, जिस तरह के कुत्ते या बिल्ली वगैरह का काट लेना है या सांप का काट लेना है, बिच्छू का काट लेना है, इनकी जो है वो इनके रिएक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है, इनके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे।
जी ठीक,
लेकिन जो अब तक हमने बात की है उसकी ट्रीटमेंट करना जो है वो इस सूरत में है कि जैसे ही आपको इस तरह का या आपके बच्चे को इस तरह का मसला पेश आए तो आप जो है उसके ऊपर कोई कूलिंग मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल करें, जिस तरह के एक जो है वो आप आइस जो है आइस क्यूब उसके ऊपर लगा सकते हैं,
बर्फ का एक टुकड़ा ले लीजिए,
बिल्कुल वो उसके ऊपर लगा सकते हैं, इससे जो है वो बहुत जो है उसकी रेडनेस और उसकी जो ख़ारिश वगैरह वो बहुत बेहतर हो जाएगी। या मुख्तलिफ किस्म के लोशंस मिलते हैं, कालामीन का लोशन है, ये लोशन जो है वो कूलिंग होते हैं, ये थोड़ी सी आपको तस्कीन उस वक्त मिलेगी। लेकिन अगर जो है रिएक्शन इस हद तक है कि वो ठीक नहीं हो रहा और बच्चा जो है उससे उसको तंग कर रहा है, तो उस सूरत में आप जो है वो कॉर्टिकोस्टीरॉइड, जिस तरह हाइड्रोकॉर्टिजोन के ऑइंटमेंट मिलते हैं, या बेटनोविट जो है वो पाकिस्तान इंडिया में अवेलेबल होता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जो है एवरी नाइट आप जो है अपने उस जो दाने वगैरह हैं उनके ऊपर लगाएं, और अगर जो है पॉसिबल हो तो उसके ऊपर एक कुछ पट्टी वगैरह जो है वो भी उसका इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि एक तो जो ये बेटनोविट है होगा, इसका असर जो है वो बहुत जल्दी ज़ाहिर होगा, उस जो आइंटमेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी और असर जल्दी ज़ाहिर होगा। और अगर जो है वो रिएक्शन इससे ज़्यादा है तो उस सूरत में आप एंटी हिस्टामिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह सिट्रीजीन है, हाइड्रोक्सीजीन है, लोराटीडीन है, मुख्तलिफ किस्म की जो है एंटी हिस्टामिन्स अवेलेबल हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आम तौर पर जिस तरह कि हमने कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर
ये ठीक होना
ये बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जो है वो अरसा ले रहा है तो इस सूरत में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इस सूरत में हो सकता है कुछ ऐसी टेस्ट जो है उनका अंजाम देना ज़रूरी हो, या जो ट्रीटमेंट है हो सकता है कि वो ओरल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाए, या जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कोर्टोन्स वगैरह का इंजेक्शन हो सकता है लगाना पड़े
है।
तो ये डिपेंड करता है, अगर तो 10 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाए तो उस सूरत में तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर जो है ये इससे ज़्यादा का टाइम ले रहा है तो उस सूरत में डॉक्टर के पास कंसल्ट।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। यहाँ पर हमने जाना है हसन के पास, और हसन भी जो है कुछ मज़ेदार किस्म की बातें हमारे लिए और नाज़रीन के लिए लेके आए, तो देखते हैं क्या है।
कोशिश करेंगे हमारी गुफ्तगू बहरहाल यानी लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन रहे और अच्छी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपकी खिदमत में हम पेश करें। होता ही है कि हम लोग सर्दियों में गाड़ी जब चलाते हैं तो हम लोग के ख़ास आदत होती हैं जो उसको बहुत दूर करना बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए मुश्किल होती है। और इसमें एक बहुत ही अहम, यानी ज़्यादातर हम लोग ये काम करते हैं कि गाड़ी हम लोगों ने ऑन की और 15 मिनट 20 मिनट ऑन रखी ताकि सही तौर से गर्म हो जाए। हीटर जो है वो उसका भी ऑन कर दिया अंदर ताकि हम बिल्कुल सही तरह से गर्म रहें। लेकिन ये किस हद तक आपके गाड़ी को, आपकी जेब को और माहौलियात को नुकसान पहुंचा सकता है शायद आप लोगों को अंदाज़ा ना हो। बाज़ लोगों को यकीनन होगा जो खुसूसन थोड़ा बहुत इसके बारे में मुतालिया करते हैं, लेकिन आम तौर से लोगों को नहीं मालूम होता है। होता ही है कि हम लोगों की जो ख़ास आदतें हैं, मिन जुमला गाड़ी को ऑन करना और काफ़ी देर तक ऑन रखना, ये हम लोगों के, जैसा कि मैंने कहा, हम लोगों की जेब के लिए गैर मुफीद है। इस लिहाज से कि हम लोग जब गाड़ी को ऐसे ही ऑन छोड़ देते हैं तो इंजन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। उसकी वजह से होता ही है कि फिर वो अपनी जो मौजूदा सही तौर से गर्मी हासिल होनी होती है इंजन को, वो गलत तरीके से हासिल करता है एक जगह काम करके। एक ख़ास चीज़ कही जाती है किसी भी मैकेनिकल चीज़ के बारे में, ऑन डिज़ाइन या ऑफ़ डिज़ाइन होना। गाड़ी बनी है चलने के लिए, अगर आप एक जगह उसको ऑन रखेंगे तो उसके इंजन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा, तो ये काम मत करिए। कोशिश करिए कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो एक बहुत ही खूबसूरत काम ये कर सकते हैं कि आप बहुत ही, यानी फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में, या अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो बहुत ही कम प्रेशर पे गाड़ी आप काफ़ी दूर तक चलाएं। फिर थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे कि बनिस्बत एक जगह खड़े रहने की गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी, और इसमें ये चीज़ हो जाएगी कि बाकी जो आपका, यानी चाहे वो गियर बॉक्स का जितना ऑयल है या दूसरी चीज़ें, वैस्किजीन, ये सब जो इस्तेमाल होती है गाड़ी में, वो बहुत तेज़ी से नर्म हो जाएगी और गाड़ी आपके चलने के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी। फ्यूल कंजम्पशन, यानी आपका तेल का जो खर्चा है, आमतौर से आप जाते हैं गैस स्टेशंस में, अच्छा खासा वक्त सर्व करते हैं, पैसे सर्व करते हैं, खुदा आजकल बहुत ज़्यादा फ्यूल महंगा हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए आप ये काम, यानी दूर करने के लिए क्या, यानी उसको, इस मसले को हल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी गाड़ी चला रहे हों तो एक मुनासिब स्पीड इख्तियार करें, खुसन जैसा कि मैंने कहा शुरू में, सर्दियों में शुरू में कम स्पीड और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। 2000 से 3000 के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा आपके, यानी वो जो राउंड पर मीटर होता है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी गाड़ी के ऊपर दबाव। ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो काम करिए वो ये कि अगर कहीं पर रेड लाइट आपको देखिए तो फ़ौरन बंद कर दीजिए गाड़ी, और आपको ये नहीं, अगर इत्मीनान है कि 1 मिनट से ज़्यादा होगी, बाज़ लोग जो होता है कुछ सेकंड के लिए भी जब रुक जाते हैं तो बंद कर देते हैं गाड़ी, ये चीज़ मुज़िर हो सकती है आपके लिए और आपके जेब के लिए। ये सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में अहम है कि कितना फ्यूल कंजम्पशन है आपका। लेकिन अगर आपको एक सही तौर से देखना है कि आपको अंदाज़ा है कि फलाना रेड लाइट जो है 1 मिनट या 1 मिनट के लगभग रेड रहती है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि उस वक्त आप गाड़ी को अपने बंद कर दें। ये आपके लिए भी बहुत मुफीद है और माहौलियात के लिए भी बहुत मुफीद है। गराज के अंदर जब आपकी गाड़ी पार्क हो, पार्किंग में जब पार्क हो, किसी सूरत से, खुदा अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर बंद हो सारा, किसी सूरत से गाड़ी को ज़्यादा देर वहाँ पे मत रखें और फौरन कोशिश करें कि उसको बाहर निकालें, क्योंकि जो कार्बन मोनोक्साइड जो होता है वो बहुत ही ख़तरनाक गैस है जो कह सकते हैं घरानों को तबाह कर सकती है। तो इस लिहाज से बहुत ही उसका भी ख्याल रखिएगा कि फौरी तौर पर गाड़ी को ऑन करने के बाद बाहर लेते आइए कहीं पर खुली जगह पर, और ज़्यादा देर ऑन मत रखिए गाड़ी को अपने। तो कई और टिप्स हैं, इंशाल्लाह वो हम बताएंगे आपको, जो खुद ड्राइविंग के सिलसिले में होंगी या इंजन के निगहदाश के सिलसिले में होंगी। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में। ये जो शक्ल आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये उन बच्चों की होती है जो कह सकते हैं कि साल भर नहीं पढ़ते और इम्तहान के वक्त पढ़ना शुरू करते हैं, तकरीबन यही सूरत हाल उनकी होती है और कैफियत भी उनकी यही होती है। तो इससे दूरी के लिए आप ये कर सकते हैं कि सही तौर से साल भर पढ़ें। लेकिन साल भर पढ़ने के लिए, खुसूसा इम्तिहान के वक्त पढ़ने के लिए, एक बहुत ही अहम चीज़ होती है, वो है आपका जहन मुकम्मल तरीके से होशियार हो, और इसके लिए मुनासिब ग़िज़ा जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा अहम, यानी अहमियत रखती है। रात को यकीनन सोना खुसूसा इम्तिहान के वक्त बहुत अहम होता है कि, यानी आप देर में मत सोएं, उस रात को पढ़ना आप छोड़ दें, यानी अगर पढ़ाई नहीं की है वो दूसरा मसला है, लेकिन आम हालात में आप पढ़ना छोड़ दें और जहन पर दबाव लाना बंद कर दें। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ आप अपनाएं। एक तो मुकम्मल नाश्ता आप करके जाएं इम्तिहान के वक्त, ज़्यादातर ये होता है सुबह को ही होता है इम्तिहान, तो अगर आपने नाश्ता नहीं किया, कहा जाता है कि ये जो आपके पूरा आसाब का सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस लिहाज से कि जब ब्लड शुगर आपकी कम होगी तो आपके सेल्स जो हैं सही तौर से काम नहीं करेंगे। जो सवाल तो आपको कल रात को याद थे, अरे भाई ये तो मुझे याद था ये सवाल, अब क्यों याद नहीं आ रहा, ये उसी नाश्ते की वजह से जो आपने नहीं किया है, ये आप यकीन मान लीजिए। और इसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सही इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर ज़्यादा मीठी चीज़ें जो हैं सुबह को कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा मीठी जो होती हैं, मतलब डायरेक्ट जो है शक्कर डाल देना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जो ये शक्कर आपके खून में जाएगी, यानी ब्लड शुगर आपके खून आपकी बढ़ेगी, फिर इंसुलिन खून में आएगी तो उसकी वजह से वो फिर से डाउन हो जाएगी और फिर आपको भूख लगना भी शुरू हो जाएगी। तो इसमें होगा ये कि आपको इम्तिहान के वक्त भूख जब लगेगी तो भूख की तरफ आपका जहन जाएगा और सवाल की तरफ नहीं जाएगा, तो इसका भी आप ख़ास ख्याल रख सकते हैं। अगर सही तौर से आपका तग़ज़िया मुनासिब हो, विटामिन बी और सी बहुत ज़्यादा मुफीद है इस सिलसिले में। विटामिन बी गोश्त और मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों में बहुत ज़्यादा वफूर में मिलता है, आपको मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन सी मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों में और इसके अलावा तरकारियों में आपको मिल सकती है, और भरपूर उसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कम से कम ये काम करें कि इम्तिहान से कुछ दिनों पहले से ये सब खाना शुरू कर दें। और एक और काम जो आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि वो तो बर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे मैंने कहा कि सही इस्तेमाल के लिए कोशिश करें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हल्की मीठी रोटियां होती हैं उसका इस्तेमाल करिए, ताकि मुनासिब मकदार में नशास्ता भी आपके बदन में पहुंच जाए और मुनासिब मकदार में शुगर भी। चलते हैं खुर्रम के पास और उनका इसके बारे में क्या ख्याल।
बहुत शुक्रिया, ख्यालात बहुत अच्छे हैं। खाने पीने के बारे में मेरे हमेशा ख्यालात जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा वो ये है कि जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ पाते या पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ पाते और एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनके लिए एक जो चीज़ मैं खुद अपनाई है वो ये है कि बजाय इसके कि सारा पूरी किताब अगर पढ़नी है पूरी किताब पढ़ें, तकसीम कर लें, क्योंकि जारी बात आप सारी किताब नहीं पढ़ सकते उन दो दिनों में या एक दिन में, तकसीम कर लें, लेकिन जो चीज़ पढ़ें उसको सही तरह से पढ़ें, ताकि अगर उस पर एक सवाल भी आ जाए उस एक सवाल को तो हदकल हम जो है वो लिख पाए।
पर आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है।
जी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस मेडिकल साइंस में जो है ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं इंसान को क्योंकि जो है हर दो तीन दिन बाद एक इम्तिहान देना होता है। बहरहाल डॉक्टर साहब के पास इतने, डॉक्टर साहब मुख्तसरन बिल्कुल मुख्तसरन बताइएगा, ख़ारिश करना सही है ऐसी जगह पर, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कभी कभार जो पस पड़ जाती है इनमें उसका क्या किया जाए, खाली किया जाए उसे, वो कुछ लोग जो हैं वो सुई लगा के उसको खोल देते हैं। और
जी अगर छाला पड़ जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए अपनी हालत में, कभी उसको जो है वो छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको छेड़ेंगे सुई से या मुख्तलिफ चीज़ों से तो उसके चांस ये है कि इन्फेक्शन जो है उसके अंदर एंटर हो जाए, और इन्फेक्शन जो है वो इस मसले को और भी आप कह लें कि मुश्किल पेचीदा कर सकती है। लेकिन जिस तरह कि आपने कहा कि ख़ारिश वगैरह, ख़ारिश आम तौर पे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी जब आपके ऊपर इस तरह का कोई रिएक्शन बदन के ऊपर आया है तो आप मजबूर हैं उसको ख़ारिश करेंगे, लेकिन ख़ारिश करना जो है वो बेहतर यह है कि आप अपना जो है एंटीस्टामिन का इस्तेमाल करें या जिस तरह की हमने ट्रीटमेंट की बात की ट्रीटमेंट करें ताकि ख़ारिश जो है वो कम हो। क्योंकि अगर आप ख़ारिश करेंगे तो ख़ारिश करने से आपका जो छाला या कोई भी चीज़ जो बनी है दाने बने हैं वो उसके ऊपर हो सकता है थोड़ा सा ज़ख्म हो जाए, और उस ज़ख्म के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे बदन के या हमारे स्किन के ऊपर नॉर्मली जो है वो रह रहे होते हैं, वो हमारे उनको मौका मिल जाता है, उनको फुर्सत मिल जाती है, वो उस ज़ख्म के अंदर एंटर हो जाएं और इससे इन्फेक्शन हो सकती है।
बहुत
तो इससे जो है वो बचना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि ख़ारिश प्रिवेंट कर सकें।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मुफीद नुकात मुख्तसरन जो है आपने हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश किए और बहुत ज़रूरी नुकात थे, क्योंकि ये जो मसाइल हैं ये हमेशा पेश आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया।
जी वेलकम
जी, चलते हैं खुर्रम, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब का, क्योंकि जिनसे काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई थी, कई महीने के बाद, मेरा बहुत खुशी हुई मिलकर। नाज़रीन चलते हैं, ईरान का एक बहुत ही ज़बरदस्त दस्तकारी का आर्ट है वो देखते हैं, कलमजनी उसे कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज है, चल के एक देख के फिर लौटते हैं आपकी खिदमत। सात बज के 16 मिनट हो रहे हैं इस वक्त ईरान के वक्त के मुताबिक, और हम लोग थोड़ी देर में अपने गुफ्तगू का आगाज करेंगे मौलाना सैयद इकबाल हैदर हैदरी से, और अब लाइन पर अगर आप मौजूद हैं तो मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। नहीं मेरे ख्याल में अभी
लाइन पे मौजूद है। अच्छा एक चीज इससे पहले कि मेरे ख्याल से आवाज़ आई, अच्छा एक चीज़ से पहले जो आप बात शुरू करें वो ये थी कि एक कल परसों भी हमारी बात हो रही थी और वो ये हो रही थी कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ऐसी तालीमात हमें दी हैं जिनको अलबत्ता हमें बताया जा रहा है कि जी हमारा रब्ता हो गया है। मैं सलाम अर्ज करता हूँ मौलाना इकबाल हैदर हैदरी साहब आपकी खिदमत में।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह।
मौलाना साहब कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है मैं आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन किराम की खिदमत में हफ्ते वहदत की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मुबारक हो। और ये हफ्ता हम लोग के कह सकते हैं कि संवरने का हफ्ता कह सकते हैं कि मुनक़द हो जाए सही तौर से अगर, तो हम लोग बहुत बेहतर हम मुसलमानों की ज़िंदगी हो सकती है। तो मौलाना साहब, रसूलल्लाह की खुद सीरत के बारे में अगर हम गुफ्तगू करना चाहें तो किस पहलू पर ज़्यादा गौर करके हमारे बीच, यानी हम मुस्लिमीन के बीच, शिया सुन्नी और तमाम फ़िरक़ के बीच इत्तेहाद कायम हो सकता है?
देखिए, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं उन पे अगर हम तवज्जो दें तो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद व वहदत बरकरार रखती है। चूँकि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुसलमानों को इत्तेहाद व यगानियत का पैगाम दिया है ताकि मुसलमान आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। चूंकि खुदावंद आलम ने खुद कुरान मजीद में ये हुक्म दिया है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और इसी तरीके से रसूल इस्लाम ने भी तमाम मुसलमानों के दरमियान में अक़्द उखुवत जारी किया और अक़्द उखुवत में हर मुसलमान को एक दूसरे का भाई करार दिया। तो जब रसूल इस्लाम मुसलमानों को इत्तहाद और भाईचारगी की दावत देते हैं तो अगर आज भी मुसलमान रसूल इस्लाम की तालीमात पर और उनके बताए हुए उसूल के ऊपर अमल करे तो निहायत तरीके से हम आपस में मुत्तहिद होकर रह सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई खौफ, कोई डर हमारे दिलों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने दूसरे मद्दे मुकाबिल को भी भाई तस्वुर करेंगे और वो भी हमें जो है वो भाई तस्वुर करेगा तो फिर ये आपसी इख्तलाफात कत्लो गारत और खून खराबे पर मुंजर नहीं होंगे। आज जो हम
मौलाना साहब, एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं, वक्त हमारे पे महदूद है, माफ कीजिएगा। मौलाना साहब, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस आपसे पूछा कि बेहतरीन मुसलमान कौन है, तो आप ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो हम पैगंबर को तो मानते हैं लेकिन पैगंबर की ये जो तालीमात हैं कि भाई पैगंबर ने फरमाया कि दूसरा मुसलमान जो है आपके हाथ और आपसे जबान से महफूज रहे, आज क्या दूसरा मुसलमान हमारे हाथ और हमारे जबान से महफूज है?
देखिए, असल मुश्किल जो आजकल मुसलमानों के दरमियान यही ईजाद हो रही है, यही पाई जा रही है कि मुसलमान एक दूसरे को वो उकूवत और बरादरी उसके दरमियान कायम नहीं है जो होना चाहिए। यानी जो इस्लाम कह रहा है, हम मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन इस्लाम की तालीमात पर उतना ज्यादा अमल नहीं करते। अगर हम इस्लामी तालीमात के ऊपर भी अमल करें तो हमारा माशरा वाकई एक नमूना माशरा हो जाएगा। हम अगर एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं तो वो रसूल इस्लाम कहते हैं कि इस सिलसिले में वो हम में से नहीं है कि जो मुसलमान सुबह उठकर मन असबा वलम यहतम्मा बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैस बिमुस्लिम, वो मुसलमान भी नहीं है। यानी रसूल खुदाम यहाँ तक ताकीद फरमा रहे हैं कि हम जब सुबह उठें तो अपने दूसरे मुसलमान भाई की हमारे दिल में फिक्र होनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता हम अपने मुसलमान भाई को नीस्त तो नाबूद करना चाहते हैं, उसका खून बहाना चाहते हैं तो ये हमारी मुसलमानी के ऊपर हर्फ है। यानी हमें अपने गरेबान में झांकना होगा कि आया हम रसूल इस्लाम की अहादीस के मुताबिक और इस्लाम के उसूल के मुताबिक हम मुसलमान हैं या नहीं हकीकत में, या ऐसा है कि हम सिर्फ जबानी तौर पर दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अमल से ये साबित नहीं हो रहा है कि हम वाकई मुसलमान हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, हमारे साथी बताएंगे वक्त हम लोगों के
हमारे
पास
पास
कितना है।
तकरीबन दो दो मिनट
दो
हैं
मिनट हैं।
जी
एक
इडली बात के बारे में जो मुझे मौजूद दिया गया था, बहरहाल अभी तो वो बाकी है।
जी
बहरहाल
साहब,
मैं मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में यह अर्ज कर दूं कि गीबत के सिलसिले में गीबत के आसार क्या क्या हैं। गीबत के आसार जो है वो दुनिया में यह है कि इंसान की इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है जिसकी गीबत कर रहा है इंसान।
सही।
उसके अलावा दुश्मनी और इख्तलाफ पैदा हो जाता है।
जी
तीसरा
बहुत बहुत
असर
शुक्रिया
दुनिया में
मौलाना
उसका यह
साहब,
है कि
हमारे साथी बता रहे हैं वक्त हम लोगों के पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होना चाहेंगे ताकि सही तौर से इस्तेफादा कर सके, महदूद वक्त तो हम लोगों का हमेशा रहता है। बहुत बहुत
कोई
शुक्रिया
बात
मौलाना साहब।
नहीं है आपकी खिदमत में।
नाज़रीन एक चीज़, कल यहाँ पे जो बसीज फोर्सेस हैं, यहाँ पर रज़ाकार फोर्सेस हैं, उनके कमांडर ने कही बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी मुस्लिमीन को कामयाबी कोई हासिल हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद के साए में रही है, और अगर कोई भी नाकामी हुई है वो वहाँ पर हुई है जहाँ पर इख्तिलाफ था। तो
जी
इसलिए ज़रूरी है हम लोगों के
इत्तेहाद
लिए,
की
अगर हम लोगों को इसको जारी रखना है, इन कामयाबियों को बहरहाल जो हम लोगों को मिली है यकीनन उसको जारी रखना है या फिर से ज़िंदा करना है, तो इत्तेहाद का रास्ता अपना लें और तफरक़े से हम लोग दूरी करें।
बिल्कुल। और मैं ये एक दरख्वास्त भी यहाँ से अपने हम प्रोग्राम से करना चाहूँगा अपने आज की खिदमत में कि
जी
इमाम
शुरू
खमेनी रहमतुल्लाह ने तो ये हफ्ता इसको हफ्ते वहदत कर दिया, लेकिन हमारे उलमा हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको ज़िंदा रखें, हर जगह
इंशाल्लाह।
पर ज़िंदा रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया आज का भी प्रोग्राम देखने का। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा
खुदा
हाफ़िज़।
हाफ़िज़।